15 जनवरी दिन शुक्रवार, नमस्कार भारत के साथ, मैं फैसल मोहम्मद अली। आईएस ने ली जकार्ता हमले की जिम्मेदारी। इंडोनेशिया पुलिस प्रमुख ने इसे दक्षिण पूर्व में संगठन के नेतृत्व को लेकर मची होड़ का नतीजा बताया।
Di Filipina sudah dideklar cabangnya mereka di Filipina Selatan.
पठानकोट हमले की जांच पाकिस्तान में हुई तेज, लेकिन जैश प्रमुख मसूद अजहर की गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। करेंगे एक बातचीत और शुरू की जा रही है नई फसल बीमा योजना, लेकिन किसान इसे लेकर कितना उत्साहित। एक किसान
के पास जाए, जिसके पास जाए, सब आदमी पैसा मांगते हैं, पैसा दे दिया जाए, नहीं मिले उसके बाद जेब से जो पैसा जाता है वो भी चला जाता है, तो इसलिए ये सब चीजें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते।
और सुनवाएंगे वॉशिंगटन डायरी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। जकार्ता में हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। संगठन का कहना है कि वो इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ बदला लेगा। एक वाकये में चश्मदीदों ने बताया कि कम से कम 3 हमलावर घटनास्थल के पास मौजूद स्टारबक्स कैफे में घुसे और वहां उन्होंने विस्फोट करने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के रिकॉर्ड $1.6 अरब यानी लगभग 1.7 खरब रुपये से ज्यादा की जैकपॉट लॉटरी के कम से कम 3 विजेता हो सकते हैं। जीतने वाले टिकट कैलिफोर्निया, टेनेसी और फ्लोरिडा में खरीदे गए थे। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि लॉटरी के विजेता कौन है। इससे पहले जो ड्रॉ निकला था वो 19वां ऐसा ड्रॉ था जिसमें लॉटरी का ग्रैंड प्राइज विजेता नहीं था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे युद्ध अपराध बताया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा,
Let me be clear. The use of starvation.
मैं साफ साफ बता दूं कि भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल करना युद्ध अपराध है। सभी पक्ष इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सीरिया की सरकार भी शामिल है, जबकि वहां के लोगों की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। यही नहीं, वहां की सरकार और भी ऐसे बहुत ज्यादतियां कर रही है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत निषेध है। सीरिया के पड़ोसी देश इसमें मदद कर सकते हैं और उन्हें चाहिए कि वो सीरिया पर शांति स्थापना के लिए दबाव बनाएं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के शब्द। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के साथ एक आपात बैठक की अपील की है, जिससे कि सीरिया में मौजूद घेराबंदी पर लगे प्रतिबंध हटाए जा सकें और वहां फंसे लोगों को मदद पहुंचाई जाए। पुलिस के छापे के बाद फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनो के शेयरों में 20% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने माना कि पुलिस ने पिछले हफ्ते छापा मारा था। कंपनी का कहना था कि पुलिस फैक्ट्री में मौजूद उपकरणों की जांच करना चाहती थी। जांचकर्ताओं को शक था कि रेनो ने भी फोक्सवैगन की ही तरह उत्सर्जन परीक्षण में बेहतर परिणामों के लिए धोखाधड़ी की है। हालांकि कंपनी का कहना है कि जांच में ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने उत्सर्जन परीक्षण में धोखा दिया हो। तुर्की मीडिया के मुताबिक दक्षिण पूर्व दियार बाकिर प्रांत में सिनार जिला पुलिस मुख्यालय में हुए कार बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है और 36 जख्मी हुए हैं। खबरों के मुताबिक धमाका पुलिस मुख्यालय के मुख्य गेट पर हुआ और हमलावरों ने इस इमारत पर रॉकेट से भी हमला किया। मरने वालों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। राहत और बचावकर्मी मलबे में लोगों को तलाश रहे हैं। मार्च 2014 में लापता हुए मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH370 की तलाश में जुटी टीम ने 19वीं सदी के जहाज का एक हिस्सा बरामद किया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा है जिसे आप फैसल मोहम्मद अली से सुन रहे हैं। नमस्कार। कल राजधानी जकार्ता में हुए हमले की जिम्मेदारी उस चरमपंथी संगठन ने ली है जो खुद को आईएस बताता है। एक वेबसाइट पर इस बात का दावा किया गया है कि यह खिलाफत के सिपाहियों का उन लोगों के खिलाफ हमला है जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला इंडोनेशिया साल 2000 से ही लगातार इस तरह के हमलों का निशाना बनता रहा है। साल 2002 में तो हुए बाली हमलों में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कल जकार्ता में हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट सुना रहे हैं अमल चौधरी।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में गुरुवार को कई जगह बम धमाके हुए। इन धमाकों में अब तक 7 लोग मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार मारे जाने वालों में 5 हमलावर हैं और 2 आम नागरिक शामिल हैं। कथित चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने एक ऑनलाइन वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि खिलाफत के सिपाही इस्लाम का विरोध कर रहे लोगों से बदला लेंगे। दूसरी तरफ इंडोनेशिया की पुलिस ने एक शख्स की शिनाख्त की है जिसने पुलिस के अनुसार इस हमले की साजिश रची। पुलिस के अनुसार बहरू नईम नाम के शख्स ने हमले का संयोजन किया ताकि वो इस्लामिक स्टेट गुट में अपनी साख बढ़ा सके। इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख टीटो कार्नावियन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,
dan kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu orang tokoh yaitu Bahrum Naim yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara।
दक्षिण पूर्वी एशिया में बहरू नईम नाम का चरमपंथी है जो क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट का मुखिया बनना चाहता है। नईम ने तो खुद को दक्षिणी फिलीपींस का प्रमुख घोषित भी कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पूर्वी एशिया में मौजूद अन्य प्रमुख चरमपंथी भी इसके मुखिया बनना चाहते हैं। इस वजह से नईम ने इस हमले की साजिश रची है। इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख टीटो कार्नावियन के शब्द, हमलों का निशाना थामन स्ट्रीट था जहां बड़े शॉपिंग सेंटर हैं। ये इलाका संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर और दूतावासों के बेहद करीब है। देश के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस चरमपंथी कार्रवाई की निंदा की और लोगों को शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि हम हमले में मारे गए लोगों के लिए शोकमग्न हैं, मगर हम इस हमले की भी निंदा करते हैं जिसने देश की शांति और सुरक्षा को ठेस पहुंचाई है। इंडोनेशिया दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इस्लामिक स्टेट से मिली धमकियों के बाद यहां हाई अलर्ट था। हालांकि स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार 200 इंडोनेशियाई लोग आईएस से लड़ने के लिए सीरिया पहुंच चुके हैं। वहीं इंडोनेशिया पर पहले भी इस्लामी उग्रवादी गुट हमला करते रहे हैं। वर्ष 2002 में बाली में हुए बम धमाकों में 202 लोग मारे गए थे जिसमें 88 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक शामिल थे। वहीं 2004 में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के बाहर हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
साल 2016 के पहले दिन ही भारत के पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ था, उस मामले में पाकिस्तान में जो जांच हो रही है उसे भारत सकारात्मक बता रहा है। हालांकि दोनों मुल्कों के बीच आज से होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत टल गई है, लेकिन दोनों मुल्क कह रहे हैं कि इसे बातचीत के बाद ही तय किया गया है, यानी टालने का फैसला जो लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। जुबैर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये जो जैश प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं ली आई है, हालांकि इसे लेकर कहा जा रहा है कई जगहों पर खबरों पर कि उन्हें पकड़ लिया गया है, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या गिरफ्तारी हुई है उसके बाद भी दोनों मुल्क इसे बताने में किसी तरह से हिचकिचा रहे हैं या मामला कुछ और है?
देखिए, जहाँ तक बात है भारतीय मौकिफ का, तो कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी पाकिस्तानी सरकार ने नहीं दी है कि अजहर महमूद भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तानी सरकार ने गिरफ्तार किया है। लेकिन कुछ गिरफ्तारियां तो हुई हैं। भारत इसकी जमानत चाहता है कि जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो अजहर महमूद को भी कीजिए, ये बता नहीं रहे हैं मीडिया वालों को, लेकिन जो हमारी बात हो रही है उनसे यही है कि हालांकि वो इससे लिंक नहीं कर रहे हैं कि बातचीत दोबारा उसी वक्त शुरू होगी जब आप अजहर को भी आप अरेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि यही एक शर्त है जो पाकिस्तान को शायद मजबूर कर रहा है भारत सरकार कि आप इसको गिरफ्तार करें, तब बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है।
जुबैर, माफ़ करेंगे, आपकी लाइन में कुछ शायद परेशानी आ रही है, फिर हम आपसे दोबारा बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। इस वक्त सीधे चलते हैं हम पाकिस्तान इस्लामाबाद इहतशामुल हक साहब के पास, और उनके सामने मौजूद हैं सारे पाकिस्तानी अखबार और एक नज़र डालेंगे वो कि अखबार वहाँ के क्या कर रहे हैं। एहतशाम साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहला सवाल जो मेरा होगा वो ये जानना चाहें कि वहाँ के अखबार मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कह रहे हैं।
देखिए जी, पाकिस्तान के सारे बड़े अखबार, इस वक्त मेरे पास 5 बड़े अखबार पड़े हुए हैं जिनमें ज्यादातर अखबार में लिखा गया है कि मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, कस्टडी में ले लिया गया है, और पाकिस्तान और भारत के बारे में हेडलाइन है सब जगहों के। मसलन उर्दू का सबसे बड़ा अखबार जंग है, उसकी पैनल हेडलाइन है پاکستان کی سمت صحیح ہے، تحقیقاتی ٹیم کا خیر مقدم کریں گے بھارت، مذاکرات مختصر مدت کے لیے ملتوی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا، سب سے بڑا انگریزی کا اخبار ہے، یہ لکھ رہا ہے پاکستان انڈیا ڈان، لکھ رہا ہے پاکستان انڈیا ایگری ٹو ڈیفر ٹاکس، اور اسی حوالے سے یہ بتا رہا ہے کہ مسعود عرب جو ہے نا اس کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیمینری رن بائی جیش محمد بن سیال کوٹ سی، ایک بڑی خبر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہی ہے۔ پھر دوسرا انگریزی کا بڑا اخبار ہے جی، یہ بھی یہی لکھ رہا ہے کہ دا نیوز پاکستان موونگ ان رائٹ ڈائریکشن انڈیا، اور اس کے حوالے سے پھر یہ مسعود اظہر کے حوالے سے بھی یہی خبر دے رہا ہے کہ جی کی گرفتاری ہو چکی ہے۔
احتشام صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں کیا کسی طرح کا کوئی لیکھ یا کوئی آرٹیکل ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر کار جب گرفتاری ہو گئی ہے تو اس بات کو کہا کیوں نہیں جا رہا، آفیشیلی ڈکلیئر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی پشٹی کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟
دیکھیے، جو ٹیلی ویژن اخبارات بتا رہے ہیں اس میں تو بڑا واضح طور پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور جب ان سے پوچھا گیا، مثلا دیکھے نا، دنیا اردو کا بڑا اخبار ہے، یہ لکھ رہا ہے مسعود اظہر کو اسلام آباد سے حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا، تحقیقات کے بعد مزید کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ یہ ایک رپورٹ فرنٹ پیج کے دنیا اخبار اردو کا، اور دوسرا بڑا اخبار ہے یہ بتا رہا ہے۔ اس طرح باقی اخبارات بھی جو ذکر کر رہے ہیں، صرف اس میں جو فرق لگ رہا ہے، شاید واضح طور پہ یہ چیزیں نہیں آ رہی، جبکہ فورن آفس کے لوگ بھی اور پرائم منسٹر کی طرف سے جو یہ پریس نوٹ جاری کیا گیا تھا کل، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کسٹڈی میں لیا گیا، اصل مقصد یہ ہے کہ بھارت کے جو کنسرن ہیں تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلی مرتبہ اتنا کھل کے یہ فیصلہ کیا گیا، اور یہ اس سے پہلے جو ٹاپ لیول کی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔
احتشام صاحب، کوئی ذکر ہے کہ یہ تحقیقاتی ٹیم جو یہ جانچ دل دلی کی طرف آئے گی، یہ کب تک ان کے آنے کا کوئی کسی طرح کی تاریخ، کوئی بات وہاں اخباروں میں،
اخبارات میں اس کا کوئی واضح طور پہ تو کوئی تاریخ کا ذکر، لیکن یہ بہت جلد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک آدھ دن میں جو ہے نا اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو اعتماد دے دیا گیا، اور بھارت کی طرف سے جو اس حوالے سے پازیٹو خبریں آئی ہیں اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ بھی ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے یہ جو واقعہ پٹھان کوٹ کا ہوا ہے، یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ سیریس ہے کہ ہندوستان کے دشمن دور کیا جائے۔ اس حوالے سے جیش محمد کا رول اور مسعود اظہر کے حوالے سے بڑا سخت رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ایڈیٹوریل اخبارات میں، سول سوسائٹی، سب یہ جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، ایسے لوگ جو رخنا ڈال لیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو، ان کو بیچ میں سے ہٹایا جائے۔ یہ بڑا واضح طور پہ اخبارات اور ٹیلی ویژن میں اس وقت نظر آ رہا ہے جی۔
احتشام الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔
بی بی سی ہندی ریڈیو پر بدھوار کو دنیا جہاں،
انتراشٹری خبروں کے پیچھے کا سچ،
شکروار کو اتہاس کی پرتیں کھولتی ویویچنا،
اور شنیوار کو آپ کی آواز انڈیا بول۔
اور اب یہ خبر پاکستان سے تو سیدھی طرح سے نہیں جڑی ہوئی، لیکن پاکستان کے ایک سنگٹھن، پاکستان کی ایک ایئر لائن سے جڑی ہوئی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے، جہاں کے دلی کاریالے پر ایک سنگٹھن نے حملہ کیا جو اپنے آپ کو ہندو سینا بتاتا ہے۔ اس نے ایک توڑ پھوڑ کی وہاں، پٹھان کوٹ حملے پر انہوں نے روش ظاہر کی، اور اس سنگٹھن کے کارکرتا پی آئی اے کے دفتر میں گھس گئے، اور وہاں انہوں نے پاکستان ویرودھی پرچے بھی بانٹے۔ پولیس نے ان میں سے ایک لوگ کو حراست میں لے لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ہیں روہت جوشی۔
گروار کو دلی میں پاکستان انٹرنیشنل الائنس کے 12 کھمبار روڈ پر استھت دفتر میں ہندو سینا نام کے ایک سنگٹھن سے جڑے کچھ لوگوں نے کتھت طور پر توڑ پھوڑ کی ہے۔ دلی پولیس کا کہنا ہے کہ دوپہر 3:15 کے قریب کچھ لوگ پی آئی اے کے دفتر میں داخل ہوئے اور وہاں رکھا سامان توڑنے پھوڑنے لگے۔ ان لوگوں نے دفتر میں ہندو سینا کی اور سے جاری کچھ پرچے بھی پھینکے، جن میں پٹھان کوٹ حملے کے حملہوروں سے پاکستان کے جڑے ہونے اور پاکستان سے کسی بھی قسم کی بات نہ کیے جانے کی باتیں لکھی تھی۔ نئی دلی کے ڈی ایس پی ایس بی ایس تیاگی کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان میں سے للت سنگھ نام کے ایک ویکتی کو حراست میں لے لیا ہے۔
یہ لوگ اندر گئے اور پھر کسی کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے مین ہینڈ کی کسی کو نہیں کچھ کیا، لیکن وہاں پہ جو سامان رکھا تھا اس کو رینسیک کرنے لگے، فرنیچر اور کچھ الیکٹرانک اپلائنسز کو۔ اور جو باہر میں ہمارا سیکیورٹی گارڈ پولیس پرسنل ڈپلائڈ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک دم اندر کچھ لوگ گئے اور رینسیکنگ کر رہے ہیں، تو امیڈیٹلی رشڈ، اس کو دیکھ کے باقی لوگ تو بھاگ گئے، ایک کو اس نے اسپاٹ سے ہی اریسٹ کر لیا۔ اس کا نام للت سنگھ ہے۔
پولیس کا कहना है कि इस मामले की पूरी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हिंदू सेना वही संगठन है जो तब चर्चा में आया था जब इसके सदस्यों ने केरला हाउस कैंटीन में गोमांस परोसे जाने को लेकर पुलिस में शिकायत की थी।
रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। देश में लगातार 2 साल से सूखे की स्थिति के बीच केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से एक नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना इस साल खरीफ सत्र से लागू होगी, लेकिन इस फसल बीमा योजना के बारे में किसानों की जानकारी को लेकर अक्सर सवाल उठ रहे हैं। वहीं योजना को मंजूरी देने के समय के बारे में राजनीतिक कारणों को भी गिनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ समीर आत्मक मिश्र।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों की बीमा से संबंधित कोई नई योजना नहीं है, लेकिन इसके ज्यादा फायदेमंद होने का सरकार दावा कर रही है। इसके तहत किसानों को अनाज और तिलहनी फसलों के बीमा संरक्षण के लिए अधिकतम 2% और हॉर्टिकल्चर और कपास की फसलों के लिए अधिकतम 5% तक प्रीमियम रखा गया है। नई योजना मौजूदा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह लेगी, लेकिन जानकारों की नजर में कितनी असरदार होगी ये योजना, बता रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री।
कोई भी बीमा योजना जब तक एक एक किसान को इकाई मानकर नहीं चलाई जाएगी तब तक वह योजना कामयाब नहीं होगी। इसमें बहुत सारी व्याख्याएं हो जाती हैं जो सैटेलाइट इमेजरी से और दूसरों से, तो किसान को तो उसमें कुछ जानकारी मिलती नहीं है, इसलिए अभी तक कोई योजना सफल हो नहीं पाई। तो उसको इकाई मानकर जब तक नहीं चलाया जाएगा तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती।
दरअसल फसल बीमा योजनाओं के बारे में खुद किसानों को ही कम जानकारी होती है। जानकारों का कहना है कि न तो किसानों को इस बारे में ठीक से बताया जाता है और न ही इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। बताया जा रहा है कि नई योजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड जैसे इलाकों के किसानों को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इन इलाकों के किसान इसके बारे में कितना जानते हैं और क्या इससे पहले उन्होंने फसलों का बीमा कराया है, ये जानने के लिए मैं पहुंचा इलाहाबाद के एक गांव में कुछ किसानों के पास और उनसे बात की।
भैया हमको कुछ भी नहीं मालूम है बीमा उमा के बारे में, फसल के बीमा उमा के बारे में, लेकिन जो सूखा अभी गेहूं वाला था उसको कुछ किसानों को मिला, कुछ किसानों को अभी तक नहीं मिला।
वैसे बीमा के बारे में आप जानते हैं बीमा क्या होता है?
तो इससे हम बीमा के बारे में यही जानते हैं कि कुछ लाभ मिलता है और, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा काम किए नहीं है सर।
देखा हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, न बिया न कुछ नहीं सरकारी, जाए तो न मिली हमसे भैया अपन खरीद के है बहुत है गेहूँ आलू सब जो बात है साहब, अब अभी जो पैसा आया है मिला ही नहीं।
मेरे साथ एक युवा किसान है, क्या नाम है आपका?
रामू कुशवाहा। आईटी वगैरह हम सब देखते हैं तो उसमें सब हर जगह दिखाते हैं अपने अपने स्टेट में, लेकिन हमारे यहाँ कोई यहाँ सुविधा नहीं है और ना तो जानकारी मिल पाती है यहाँ ब्लॉक से, जो भी योजनाएं आती हैं ब्लॉक से जानकारी नहीं मिल पाती।
ये जो फसल बीमा योजना शुरू हुई है
इसको तो मालूम है हमको, 15 दिन पहले जो है पेपर में निकला था तो मालूम हुआ है।
अब कराएंगे आप?
हाँ, क्यों नहीं कराएंगे।
अब किसके पास जाए, जिसके पास जाए सब आदमी पैसा मांगते हैं, पैसा दे दिया जाए नहीं मिले, उसके बाद जेब से जो पैसा जाता है वो भी चला जाता है, तो इसलिए ये सब चीजें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते।
उधर सरकार के इस फैसले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसे राजनीतिक लाभ पाने के मकसद से लाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक और लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
सरकार अगर ये भूल जाए कि खाली रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से योजनाएं लागू करके या योजनाओं की घोषणा करके उन तक पहुंच जाएगी तो मुश्किल है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियां अपने संदेश को ग्राम ग्राम पहुंचा देती हैं, उस तरह से उनको किसानों के बीच में, खेती खरीदारी के बीच में जाना चाहिए, उनको अपना भेजना चाहिए, चाहे ग्रुप इस तरह के डेवलप करें।
दरअसल हाल ही में कुछ राज्यों में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं थी, ज्यादातर जगहों पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। वैसे ये भी कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का असर शहरी मतदाताओं पर ज्यादा है और ग्रामीण मतदाताओं पर कम। जानकार कहते हैं कि शायद इस वजह से भी भाजपा किसानों से नजदीकी कायम करने की कोशिश कर रही हो। जानकारों का ये भी कहना है कि वजह चाहे जो हो, लेकिन यदि योजना की सही और समुचित जानकारी किसानों को दी गई तो लाभ मिलना तय है।
ये थे समीर आत्मन मिश्र। जहां सरकार एक और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कई किस्म की उम्मीदें लगा रही है, वहीं इस नई योजना को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसे समझने के लिए हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा से बात की।
पहली बात तो यह है कि सरकार जो ये इतने दिनों से सोच रही थी कि क्रॉप इंश्योरेंस पे कुछ होना चाहिए, उसकी तरफ ये एक कदम तो वाकई ही बढ़ोतरी हुई है और एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ ही इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि अभी हमें एड्रेस करने की जरूरत है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि भाई प्रीमियम का अमाउंट 2% हो जाने से या 1.5% हो जाने से सारे देश के किसान इसकी तरफ जाएंगे। सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो किसान को जो नुकसान होता है मौसम से, वो जो होता है वो पर यूनिट बेसिस के ऊपर नहीं असेस किया जाता, नहीं उसको आंका जाता। चैलेंज ये होना चाहिए कि कैसे हम इसको पर यूनिट बेसिस पे, यानी हर खेत का जो उसका नुकसान हुआ है वो भरपाई कर पाए। तो मुझे समझ नहीं आता है कि हम पंजाब और हरियाणा, स्पेशली हरियाणा का जो क्रॉप इंश्योरेंस का मॉडल है वो मेरा मानना है कि वो बिल्कुल पर्याप्त है देश के लिए, जो हमें जरूरत है उसको लेना चाहिए।
पिछली जो योजनाएं थी इस तरह की बीमा की, उनकी जगह इसको इसे रिप्लेस करके लाया गया है, तो उन इसमें और उन योजनाओं में क्या अंतर रहा है?
उसमें कुछ एक चीजें हैं जो इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि इसमें पहले यह था कि हर स्टेट अपना अपना क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम लेके आती थी, तो कहीं पर 2% या 1.5% प्रीमियम था, तो कहीं पर 12% था, कहीं पर 18% था, मतलब करेगा अलग अलग जो प्रीमियम थे। अब ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न हो गया, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात जो है इसमें, जो आपने कहा कि क्या इसमें अंतर है, अंतर यह है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की बात की जा रही है, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि टेलीफोन से, मोबाइल फोन से और ड्रोन से आप ये तो कर सकते हैं कि कौन से खेत को नुकसान हुआ है, लेकिन ये नहीं बता सकते उससे कि भाई कैसे, कितना नुकसान हुआ, कितने परसेंटेज नुकसान हो गया है, वो तो आपको जाके फिजिकली ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो ठीक है, लेकिन इतना नहीं है व्यापक, या इतना वो नहीं होगा उसका इम्पैक्ट जितना कि जो रियल टाइम जो कहते हैं आप, या फिजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसके साथ होगा। और एक जो मुझे लगता है कहीं वो जो कहीं कमी रह गई है, वो ये है कि बैंक अभी अपने उसमें से जो किसान ने लोन लिया हुआ है उसमें से एक उनका जो प्रीमियम काट के दे देते हैं, और कंपनी को पता ही नहीं होता कि कौन सी फसल पे उन्होंने प्रीमियम किया है, या कितना का उसमें कौन सी किस किसान का सिर्फ नाम और पैसा उनको मिल जाता है, और उसके बाद वो आके अंत में उसका कहीं भुगतान करना हो तो कर देते हैं। लेकिन अभी तक ये रहा है कि 90% जो प्रीमियम दिया जाता है, जो किसान कंपनियां थी उनको प्रॉफिट होता था, 90% प्रॉफिट उनकी जेब में जाता था, मतलब प्रीमियम का पैसा, और 10% ही सिर्फ किसानों को कंपनसेशन के माध्यम से मिलता था, एवरेज जो बताऊं मैं देश की। तो अब आशा करते हैं कि शायद ये, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि 1.5 महीने के बाद अगर कंपनी नहीं करती है तो उनको 1.5 महीने के भीतर भीतर करना है, तो शायद ये कंपनियां जो हैं वो ज्यादा उसमें किसानों को भरपाई कर पाएंगी।
अच्छा, कई जो किसान नेता हैं उन्हें बड़ा ऐतराज भी है कि इस तरह की बीमा योजनाओं में निजी कंपनियों को शामिल किया जा रहा है, और असल में वो, जैसा अभी आपने भी कहा कि मुनाफा उन्हीं का है।
ये सच्चाई तो है ही है कि भाई निजी कंपनियों को जब हम इन्वॉल्व करते हैं, आज जमाना प्राइवेटाइजेशन का हो चुका है, वो निजी कंपनियां सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। मैं आपको अमेरिका का उदाहरण दे सकता हूं कि अमेरिका में इतना बड़ा उनका व्यापक ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि अगर आप उस पर कभी रिसर्च भी कर लें तो अमेरिका में $1 प्रीमियम के ऊपर कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो $1.5 कमाती हैं।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब सुनिए ब्रजेश उपाध्याय की साप्ताहिक डायरी वॉशिंगटन से।
बॉस, आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? अरे जो दिल में हो खुलकर कहें, हमारे जैसे बहुत गरीब पत्रकारों का भला होगा। जब भी हमारी सर्वे करने वाली टीम आपकी पसंद नापसंद से जुड़े सवालों के साथ आपके पास पहुंचती है तो आप बड़े ही चौड़े होकर कहते हैं, देखें जी, हम तो बस ऐसी खबर पढ़ना सुनना चाहते हैं जिनसे हमें पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, उनसे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, साथ में विज्ञान, सेहत, टेक्नोलॉजी की भी खबरें हों तो क्या कहने हैं। उसके बाद आप ये भी कहते हैं कि टीवी न्यूज़ चैनलों के पास तो दिखाने को कुछ होता ही नहीं है, एंकर चिल्लाते रहते हैं, चार लोग बैठकर एक ही बात चार तरह से कह रहे होते हैं। फिर आप घर पहुंचते हैं और जैसे ही हाथ में रिमोट आया कि बेबी डॉल में सोने दी की कहानियां जिस चैनल पर आ रही होती हैं वहीं रुक जाते हैं। बाढ़ में गया अमरीका ईरान परमाणु समझौता, जलवायु परिवर्तन, अमरीकी चुनाव और आइसिस। एक ही हफ्ते में सर्वे करने वाली टीम की रिपोर्ट कूड़े में पहुंचती है और चैनल पर शुरू हो जाती है तिलस्मी बाबा, करामाती बिल्ली, डॉन का प्यार, धोनी का चमत्कार। एंकर और एंकरनी फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं चल पाता है कि खबर अच्छी है या बुरी। सवाल पूछते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे साल अभी शुरू ही हुआ है और मैं इतना भन्नाया हुआ क्यों हूँ। बॉस, आपके झूठ के चक्कर में 700 गरीब पत्रकारों की नौकरी जा रही है। ढाई साल पहले उन्होंने अल जजीरा अमरीका के लिए काम करना शुरू किया था। 30 अप्रैल को अपनी आखिरी पगार लेंगे क्योंकि चैनल बंद हो रहा है। वैसे तो बंद होने की बड़ी वजह यह भी कही जा रही है कि चैनल का नाम है अल जजीरा और अमरीका में बहुत सारे हैं जिन्हें अल जजीरा और अलकायदा एक ही जैसे सुनाई देते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी वजह हैं आप। चैनल खोलने से पहले बेचारों ने सर्वे करवाया कि आप क्या देखना चाहेंगे। 60% लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, ऐसी खबरें जो आम लोगों से जुड़ी हो, जिनमें पूरे अमरीका की बात हो रही हो, सिर्फ वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले अमरीका की नहीं। आपने कहा कि दूसरे चैनलों में इसकी बड़ी कमी महसूस करते हैं। बस क्या था, चैनल ने ताबड़तोड़ वैसी ही खबरें दिखानी शुरू कर दी। अफ्रीका की गरीबी, लातिनी अमेरिका के ड्रग वार, मेक्सिको से अमेरिका में घुसने वालों की मजबूरी, इसराइल और मध्य पूर्व की जंग, सीरिया की बेहाली। यानी मेरे एक मित्र का मुहावरा उधार लूं तो उनके शब्दों में ज़्यादातर रोता आया मरते की खबर लाया वाली खबरें। सर्वे में 60% लोग ऐसी खबरों की मांग कर रहे थे। TRP में पता चला कुल 28,000 लोग चैनल देख रहे थे। अब अगर आप खुलकर कह देते कि भाई साहब किम कारदाशियां की कहानियां और बेहतर तरीके से दिखाओ, हिलरी क्लिंटन की पॉलिसी नहीं बिल क्लिंटन की प्रेम कहानियों पर एक सीरीज दिखाओ, मिशेल ओबामा के डिजाइनर कपड़ों पर हर हफ्ते एक एपिसोड हो, मार धाड़ सेक्स रोमांस से भरपूर खबरें हों, तो क्या चला जाता आपका? 700 लोगों की नौकरियां तो नहीं जाती। तो मुझे आप सच सच बता दें, पब्लिकली नहीं तो मेरे ट्विटर हैंडल @brajup पर ही बता दें, क्योंकि कड़ाके की ठंड में मैं इस महीने के आखिर में आयोवा जाऊंगा, फिर एक हफ्ते में न्यू हैम्पशायर जाऊंगा, क्योंकि इन दोनों जगहों से अमरीकी चुनाव की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स अपने अपने उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप अगर सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपके लिए 24/7 खबरें पहुंचाने में लगा रहूंगा। लेकिन अगर नहीं तो मैं इस ठंड में ही सही कैनेडा का टिकट कटवाऊँ। सनी लियोनी वहीं पैदा हुई थी, उनके घर के बाहर तंबू लगाकर उनके बचपन से लेकर अब तक की एक एक कहानी आपके सामने साल भर परोसता रहूंगा। और बैकग्राउंड में तस्वीरें वही जिन्हें देखकर आपकी उंगलियां रिमोट से चिपक जाती हैं। आखिर नौकरी तो करनी है ना बॉस। वैसे भी सुना है एक जाने माने संपादक जिनकी मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ, इन दिनों लियोनी जी के साथ वॉक और टॉक दोनों ही करने जा रहे हैं दिल्ली की ताज़ा ताज़ा हाल ही में साफ हुई हवाओं में। उन्होंने आपसे कुछ सुना होगा तभी तो मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे भी अपनी दिल की बात बता ही डालें। मैं भी सोने की चमक से शायद चमक जाऊं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
और अब सुने खेल की खबरें स्वाति बख्शी से।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीमित ओवर वाली सीरीज में आज दूसरा एक दिवसीय मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाना है। भारत पर मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी करने का दबाव है, खासकर कमजोर गेंदबाजी पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले ही निराशा जाहिर कर चुके हैं। भारत 309 रन का स्कोर खड़ा करने के बावजूद पहला मैच 5 विकेट से हार गया था। पर्थ में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वरिंदर सरन ने अच्छा प्रदर्शन किया और 56 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनके इस प्रदर्शन के दोहराव की उम्मीद दूसरे मैच में भी होगी। भारत के 2 अन्य तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव पर्थ में प्रभावी नहीं रहे। भुवनेश्वर किफायती साबित हुए लेकिन यादव ने काफी रन खर्च किए। हालांकि दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सके। बल्लेबाजी में भारत के लिए नाबाद 171 रन जोड़ने वाले रोहित शर्मा कहते हैं कि पिछले मैच से सबक सीखकर उतरना होगा।
पर्थ में खेले गए पहले मैच में सकारात्मक बातें थीं जिनसे सबक लिया जा सकता है, खासकर 300 से ऊपर का स्कोर खड़ा करना। मैच हारना जरूर निराशाजनक था लेकिन हमने वो सब किया जो हमारे बस में था। उनकी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई जिसकी वजह से हम खेल में वापसी नहीं कर सके। हमें अपनी गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है।
उधर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर का कहना है कि गाबा पर भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में पिच सपाट होगी लेकिन वाका की पिच से अधिक प्रतिस्पर्धा रहेगी। फॉकनर ने दूसरे वनडे से पहले कहा कि पर्थ की विकेट से सभी हैरान रह गए थे, ये काफी सपाट विकेट थी और उस पर काफी रन बने। उन्होंने कहा कि ब्रिस्बेन की भी विकेट ऐसी ही होगी। दक्षिण अफ्रीका के नए टेस्ट कप्तान AB de Villiers का कहना है कि ये तय नहीं है कि वो इंग्लैंड सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान बने रहेंगे या नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ केप टाउन में दूसरे टेस्ट मैच के दौरान हाशिम अमला ने कप्तानी से हटने की घोषणा की थी, जिसके बाद 31 वर्षीय डिविलियर्स को कमान सौंपी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की खबरों पर डिविलियर्स ने कुछ साफ तो नहीं किया है लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दिया कि अफवाहों में कुछ सच्चाई भी होती है।
और कार्यक्रम खत्म करने से पहले एक बार फिर से सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार। जकार्ता में हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। संगठन का कहना है कि वो इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ बदला लेगा। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के रिकॉर्ड 1.6 अरब डॉलर की जैकपॉट लॉटरी के कम से कम 3 विजेता हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे युद्ध अपराध बताया है। पुलिस के छापे के बाद फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनो के शेयरों में 20% गिरावट दर्ज की गई। बीबीसी समाचार।
इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था शाकिर आलम ने। आपसे मुलाकात होगी एक घंटे बाद। नमस्कार।